अगला चैप्टर देखेंगे, सदका फितर के मसाइल, सदकतुल फितर। पहली बात, सदका फितर फ़र्ज़ है। फ़र्ज़ का मतलब हम सब जानते हैं कि जिस तरह ज़कात फ़र्ज़ है उसी तरह ये भी फ़र्ज़ है। सदका फितर का मकसद रोज़े की हालत में सरज़द होने वाले गुनाहों से ख़ुद को पाक करना है। बावजूद कोशिश के इंसान से गुनाह हो ही जाते हैं, तो सदका फितर के ज़रिए से ये चीज़ें फिर अल्लाह ताला की रहमत से हमारे लिए पाकी का सबब बनती है। और लफ्ज़ फितर जो है, इसको भी आप अगर देखें, ये वही चीज़ है जिसको हमारी ज़ुबान में फितराना कहते हैं। और फितराना, फतर, फातोए, रा जो लफ्ज़ है ना, असल में अरबी ज़बान में नाश्ते को कहते हैं, फतूरा, फतूर नाश्ते को कहते हैं। तो उसी से फिर जो फतराना और फितर जो है वो यही आता है रोज़े के साथ ताल्लुक, क्योंकि अमूमन रोज़े में सुबह का वो वक्त हमारा खाली गुजरता है, भूखे गुजरता है। तो सदका फितर या फतराना एक ही चीज़ है जिसका ताल्लुक रोज़े की हालत में हुई हुई गलतियाँ और जो भी कमी बेशी है उसका कफ़ारा है। सदका फितर नमाज ईद से कबल अदा करना चाहिए, वरना आम सदका शुमार होगा। नमाज से पहले पहले सदका फितर के मुस्तहिक वही लोग हैं जो ज़कात के मुस्तहिक हैं। अब ये सारा चैप्टर इकट्ठा करके फिर इसमें जो चीज़ें रह जाएंगी उसको हम देखेंगे इंशाल्लाह। अन इब्ने अब्बास रदियल्लाहु अन्हुमा क़ाल, फ़रद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़कात अल-फ़ित्र तुहरतन लिस्साइमी मिनल लग़वी वर्रफ़सी वतोमतन लिल्मसाकीनी फ़मन अद्दहा क़ब्ल सलाती फ़हिया ज़कातुन मक़बूलतुन वमन अद्दहा बादस सलाती फ़हिया सदक़तुन मिनस सदक़ात। हज़रत इब्ने अब्बास रदी अल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सदका फितर रोज़ेदार को बेहूदगी और फुखश बातों से पाक करने के लिए, नीस मोहताजों के खाने का इंतज़ाम करने के लिए फ़र्ज़ किया। जिसने नमाज ईद से पहले अदा किया उसका सदका फितर अदा हुआ, और जिसने नमाज फितर नमाज ईद के बाद अदा किया इसका सदका सदका फितर आम सदका शुमार होगा। इसे अहमद और इब्ने माजा ने रिवायत किया। तो बात वाज़े है कि ये फ़र्ज़ है, हत्ता कि इसमें आप देखेंगे आगे जाके कि वो लोग भी जिनके पास नसाब जितना पैसा है कि नहीं, यानी ज़कात तो एक ख़ास जगह पे जाके फ़र्ज़ होती है, सदका फितर तो बिल्कुल आम दर्जे पे भी फ़र्ज़ हो जाता है, और इसको नमाज से पहले अदा करना चाहिए। इसकी हिकमत भी समझ आ गई कि एक तो यह कि रोज़े की हालत में इंसान से जो गुनाह हो जाते हैं उसकी कफ़ारा, और दूसरा ये कि गरीब अब ईद की खुशियों में कुछ ना कुछ अपने लिए इस्तेमाल कर सकें चीज़ें। अब देखिए कि एक ये भी सवाल ज़हन में आता है कि अल्लाह ताला जो हैं वो ख़ुद भी हमारे गुनाहों को माफ़ कर सकते थे। ज़ाहिर हमने इतने शौक़ से तपाक से रोज़े रखे, अब कुछ गलतियां हो गई तो क्या अल्लाह की ज़ात माफ़ नहीं करेंगी? कर देंगे। लेकिन ये थोड़े से पैसे अदा करवाना असल में हमारे थोड़े से जो पैसे होते हैं ना, ये हमारे दिल का गिल्ट दूर करने के लिए होते हैं। आप फील करते हैं कि जिस चीज़ के लिए आप रो धो लें, माफ़ी मांग लें, नफिल पढ़ लें, सदका दे दें, तो ऐसे लगता है कि जैसे दिल के अंदर से भी वो चीज़ चली जाती है। तो हमारी अपनी ज़्यादा फ़ायदा इसमें, हमारा अपना ज़्यादा फ़ायदा होगा बजाय इसके कि दूसरों का ज़्यादा इसमें यानी हो। अल्लाह ताला तो वैसे ही माफ़ कर सकते हैं, और साथ ही साथ गरीबों को फिर ईद की खुशियों में शामिल करने का एक ज़रिया भी बनता है। सदका फितर की मकदार एक सा है, जो पौने तीन सेर या ढाई किलोग्राम के बराबर है। सदका फितर हर मुसलमान, ग़ुलाम या आज़ाद, मर्द हो या औरत, छोटा हो या बड़ा, रोज़ेदार हो या गैर रोज़ेदार, साहिब नसाब हो या ना हो, सब पर फ़र्ज़ है। अन इब्ने उमर रदी अल्लाहु अन्हुमा क़ाल, फ़रद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़कात अल-फ़ित्र सअम من دمر أو ساعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين. حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کا صدقہ فطر ایک سا کھجور یا ایک سا جو غلام آزاد مرد عورت چھوٹے بڑے ہر مسلمان پر فرض کیا ہے. اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا. جس شخص کے پاس ایک دن رات کی خوراک میسر نہ ہو وہ صدقہ ادا کرنے سے مستثنی ہے, کیونکہ اس کو تو بلکہ دیا جائے گا نا, بجائے اس کے کہ اس سے لیا جائے. تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے اتنی سہولت کی. اب آپ دل میں سوال آتا ہے کیوں, ہر ایک پہ کیوں ہے, غلام پہ کیوں, مسکین پہ کیوں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ کیا بندہ کسی کو ایک وقت کا کھانا نہیں کھلا سکتا؟ غریب سے غریب بندہ بھی کیا اس کے گھر میں کوئی مہمان نہیں آتا؟ تو ایک وقت کا کھانا غلے کی صورت میں دیں, اناج میں دیں, گھر میں پکے ہوئے کھانے کی قیمت ہے. تو ہر ملک کے اندر رہتے ہوئے جو بھی لوگ وہاں ایک وقت کا کھانے پہ استعمال کرتے ہیں, تو میرا خیال ہے کہ غریب سے غریب بھی اس کو دے سکتا ہے. اس سے پتہ چلتا ہے نا کہ کچھ نہ کچھ لائبلٹیز ہر ایک پہ ہونی چاہیے. ہمارے اوپر جب ذمہ داریاں نہیں ہوتی نا, تو اس کی وجہ سے پھر ہم زیادہ ریلیکس ہو جاتے ہیں. جتنی کسی کے اوپر ذمہ داریاں زیادہ ہوتی ہیں وہ اتنا ایکٹیو ہوتا ہے. اب جتنی ذمہ داریاں کم کرتے جائیں گے نا اتنا وہ سست ہوگا. تو بالکل یہی چیز اللہ تعالیٰ نے مسلمان ہونے کے ناطے مسلمانوں پہ رکھی کہ ہر وقت زکوٰۃ لینے کی موڈ میں کیوں رہتے ہو, کچھ کرو تاکہ تمہیں بھی کہیں نہ کہیں دینا پڑے. صدقہ فطر غلے کی صورت میں دینا افضل ہے. گیہوں, چاول, جو, کھجور, منقع یا پنیر میں سے جو چیز زیر استعمال ہو وہی دینی چاہیے. عن ابی سعید رضی اللہ عنہ یقول کنا نخرج زکاۃ الفطر ساعا من طعام او ساعا من شعیر او ساعا من تمر او ساعا من اقط او ساعا من زبیب. حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم صدقہ فطر ایک سا غلہ یا ایک سا جو یا ایک سا کھجور یا ایک سا پنیر یا ایک سا منقع دیا کرتے تھے. اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا. باقی تو چیزیں آپ سمجھ گئے ہوں گے. منقع پتہ کیا ہوتا ہے؟ موٹے انگور جو ہوتے ہیں نا, اس کا خشک چیز. ایک تو چھوٹے انگور سوکھتے ہیں تو وہ کشمش یا سونگی ہوتی ہے, لیکن جو بڑا انگور سوکھتا ہے اس کو منقع کہتے ہیں. مراد یہ کہ جس ملک میں جو بھی چیز کھائی جاتی ہے اسی کو دیا جا سکتا ہے. صدقہ فطر ادا کرنے کا وقت آخری روزہ افطار کرنے کے بعد شروع ہوتا ہے, لیکن عید سے ایک یا دو دن پہلے ادا کیا جا سکتا ہے. صدقہ فطر گھر کے سرپرست کے کو گھر کے تمام افراد, بیوی, بچوں اور ملازموں کی طرف سے ادا کرنا چاہیے. یعنی جس کے گھر میں آپ ہیں وہ سب کا دے دے گا, حتیٰ کہ اگر کوئی مہمان بھی آتا ہے تو وہ بھی گھر والا اس کے بارے میں دے سکتا ہے, اس کی طرف سے دے سکتا ہے. عن نافع رضی اللہ عنہ کان ابن عمر رضی اللہ عنہما یؤتی عن الصغیر والکبیر حتی ان کان یؤتی ان نبی ام بنیہ وکان ابن عمر رضی اللہ عنہما یؤتیہا للذین یقبلونہا وکانوا یؤتون قبل الفطر بیوم او یومین. حضرت نافع رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ابن عمر گھر کے چھوٹے بڑے حضرت نافع رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ابن عمر رضی اللہ عنہما گھر کے چھوٹے اور بڑے تمام افراد کی طرف سے صدقہ فطر دیتے تھے, حتیٰ کہ میرے بیٹوں کی طرف سے بھی دیتے تھے. اور ابن عمر ان لوگوں کو دیتے تھے جو قبول کرتے, اور عید الفطر سے ایک یا دو دن پہلے دیتے تھے. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. تو یہ تھا صدقہ فطر. یا آپ اس کے بارے میں کوئی سوال ہو تو پوچھ سکتے ہیں. بات واضح ہے نا, کوئی مشکل تو نہیں؟ جی آپ پوچھیے. जी आप देखिए कि जहाँ आप रहते हैं इसके बारे में तो ये आते हैं ना, गरीब गुरबा का हक है और आपने उससे पहले देना है। इवन अगर आप यहाँ रहते हैं और आप पाकिस्तान में देना चाहते हैं, तो आप पाकिस्तान में अपने घर वालों को, दोस्तों को जो भी वहाँ रहते हैं, फ़ोन पे कह सकते हैं कि रमज़ान से यानी ईद की नमाज़ से पहले पहले वो दे दें। लेकिन अगर यहाँ आप जमा करवाते हैं कहीं भी है तो ठीक है, इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आप इसको एक ज़बरदस्ती के साथ रखें। हाँ, जो लोग ले रहे होते हैं फिर उनके लिए ये है कि उसको, जैसे मिसाल है कि डोनेशन बॉक्स उसमें डल गया, अब आपकी तरफ से नियत हो गई, तो अब अगर फ़ौरन वो चीज़ नहीं भी वहाँ पहुँच सकी या उसके लिए कुछ वक्त का इंतज़ार किया जाता है, तो इंशाल्लाह आपकी तरफ से अदायगी हो गई। जी हाँ जी, कोई हर्ज नहीं, बीवी के पास पैसे हैं अपना, वो कमाती हैं, लेकिन इसके बावजूद अगर मियाँ उनकी तरफ से देना चाहें तो दे सकते हैं, कोई हर्ज की बात नहीं। इसी तरह मेहमान की तरफ से आप देते हैं या मेहमान अपना खुद देता है, सिंपल सी बात है, कोई हर्ज नहीं इसमें। कोई ज़्यादा भी देना चाहे, कम भी देना चाहे, तो भी कोई हर्ज की बात नहीं है। और ये ऐसी चीज़ है कि अगर एक टाइम ख़त्म हो गया ना ईद की नमाज, तब उसके बाद आप देते रहें, जो भी करें वो सदका होगा, वो सदका फितर नहीं होगा। अगर पिछली ज़िंदगी में नहीं मालूम था, कभी गलती से, कमी किसी भी वजह से अगर नहीं दे सके, तो अल्लाह ताला से माफ़ी मांग सक ले, इंशाल्लाह अल्लाह ताला माफ़ कर देते हैं। लेकिन ये है कि अब मालूम हो गया तो इसके बाद इंशाल्लाह देंगे। फिर यहाँ देखिए कि सदका फितर के मुस्तहिक वही लोग हैं ना जो ज़कात के मुस्तहिक है, तो वो ज़कात की 8 मदूद आप देखें, तो इससे पता चल रहा है ना कि अगर किसी वजह से किसी गरीब को नहीं दे सके तो फी सबीलिल्लाह की चीज़ों में या जो भी चीज़ें हैं उसमें दिया जा सकता है। मकसद ये कि आपके हाथ से वो चीज़ निकल जाए। अब इस्तेमाल वो फ़ौरन तो नहीं होगी ना रातों रात, लेकिन इंशाल्लाह आपके नाम पर अजर चला जाएगा। जी आपका सवाल ये है कि रमज़ान में जब आप जाते हैं तो वहाँ इफ्तारी के वक्त में खजूरें और जूस बांट रहे होते हैं हज में या जब भी, तो ऑफ़ कोर्स अगर वो ऐसी मेहमान नवाजी में खिला रहे हैं तो आप खा सकते हैं। और आप अगर रमज़ान है या हज है कोई भी, तो आप इस सोच से ले सकते हैं ना कि अगले को अपना अपने अजर में शामिल करें। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि अरब लोग ज़कात की चीज़ें यूँ बांटते होंगे, ज़कात से तो कोई लेके नहीं, बट ये हमारा ही कल्चर है मुझे लगता है कि अपनी मासियों को और अपने लोगों को ज़्यादा देना, क्योंकि उनको भी पता है कि यहाँ जो आए हुए हैं वो लोग हर एक ऐसा नहीं है कि जिसको ज़कात लगे। लेकिन अगर कोई दे आपको शक है तो पूछ लें कि ये ज़कात से तो नहीं है। और हाँ, सदका अगर वो कहे तो फिर ले लें, सदका हर नेकी को सदका कहते हैं। हमारे यहाँ लफ्ज़ सदका भी एक बड़ा ही अजीबोगरीब सा मारूफ बन चुका है ना, ऐसा नहीं? अब आपने पीछे पढ़ लिया ना इसी बुक के शुरू में कि हर चीज़ सदका है। जैसे आप हर सदके को सदका कहते हैं, फी सबीलिल्लाह आपका मुस्कुराना भी सदका है, दो मियाँ का अपनी बीवी के लिए एक लुकमा जो देना वो भी सदका है। लेकिन फिर सदका है फ़र्ज़ और नफिल और उस चीज़ में, लफ्ज़ सदके में तो कोई कबाहत नहीं है। हमारे कल्चर के अंदर ये थोड़ा सा लफ्ज़ बोझल महसूस किया जाता है और इसके बारे में दिल में शक आता है। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह ये टॉपिक यहाँ पे पूरा हुआ।